रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरित मानस में अब ये तीसरा कांड अरण्य कांड है। ये तीसरा सोपान है। सोपान माने पगोथिया। पहले दो श्लोक हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकर की वंदना है। भगवान शंकर के लिए बोलते हैं गोस्वामी जी महाराज कि धर्म रूपी वृक्ष के ये मूल आधार है भगवान शंकर, और विवेक रूपी सागर के चंद्रमा है, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य है, और पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं। और भगवान राम को ये बहुत प्रिय है, मोह रूपी बदलों को नष्ट करने में ये प्रवीण है। ऐसे समस्त कलंकों का पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर की यह वंदना क्यों की गई? भगवान शंकर की वंदना इसलिए की गई कि ये रामचरित मानस है, ये भगवान शंकर की कृपा से गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। इसलिए प्रत्येक कांड में गोस्वामी जी महाराज शंकर जी की कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रशंसा करते ही हैं। दूसरे श्लोक में राम जी की वंदना करते हैं। राम जी के लिए बोलते हैं कि राम जी महाराज का जो श्यामल शरीर है वो वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण का है। अब ये बरसात के अंदर दो प्रकार के बदल होते हैं, एक तो जैसे काली काली घटाएं आती हैं, तो ये भगवान का श्याम वर्ण में दो उपमा दी जाती है, या तो नील मणि की उपमा दी जाती है और या फिर काले काले बदल की उपमा दी जाती है। क्यों? कि काले काले बदल जब आसमान में फैलते हैं तो देखने वाले का, पशु पक्षी का, सबका चित्त प्रसन्न होता है कि बरसात आएगी। उस बरसात से सबको जीवन मिलता है। ऐसे भगवान का जो श्यामल शरीर होता है, श्यामल श्री विग्रह है, सबको आनंद देने वाला होता है। और दूसरा बरसात के समय में खुला आसमान होता है, वो आसमान एकदम चमकता है, नीला नीला आकाश, क्योंकि बरसात के समय में बदल नहीं होते, मिट्टी कचरा सब नीचे बरसात से गिर जाता है और आसमान साफ होता है, प्रचंड सूर्य का प्रकाश होता है तो साफ दिखता है, एकदम नील मणि के समान दिखता है। उससे आशा रहती है, अरे आज आसमान में चमक ज्यादा है तो आज बरसात आएगी। खूब आसमान गहरा चमकता है तो उस समय में आशा होती है कि अब बरसात आएगी। इसलिए बरसात से आने से पहले आकाश की जो निर्मलता होती है वो भगवान का श्री विग्रह का रूप होता है, अथवा बरसात के समय में जो कालिमा होती है वो भगवान के श्री विग्रह का रूप होता है। भगवान पाणु बाण शरासनम कटिलसत तूणी रभारम वरम, भगवान धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। देखो धनुष बाण तो भगवान पहले से ही हाथ में लिए हुए थे, यहाँ धनुष बाण हाथ में लेकर के जो बात कही जा रही, क्यों है कि अब इसका उपयोग यही होगा। अब तक भगवान ने धनुष बाण का उपयोग किया ही नहीं था, हाथ में जरूर था, बच्चे थे तब पावन मृगों को मारते थे, शिकार खेलते थे भगवान। कई लोग शंका भी करते हैं कि भगवान शिकार क्यों खेलते थे, भगवान कोई साधारण क्षत्रिय तो थे नहीं, उनको क्यों शिकार, निरपराध बिचारे प्राणियों को मारना। पर गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा समाधान किया कि पावन मृग मारते थे वो, पावन मृग। पावन मृग माने पवित्र मृग, अर्थात जो इस मृग शरीर के बाद भगवान का भजन करके मानव शरीर प्राप्त करके और परमात्मा को प्राप्त होकर के मरना चाहते थे, ऐसे जो मृग थे उनको मारा। तो क्या मृगों में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है कि नहीं होती? तो फिर तो बात यह है कि भगवान सबके कर्म को जानने वाले हैं। वेदाहम सम अतीतानि वर्तमानानि चार्जुन है, किसने कौन से कर्म किए उसका क्या फल होता है इसको मैं सब जानता हूँ। तो भगवान को मालूम था कि ये मृग है, अगली बार में मनुष्य बनेगा और फिर जो है ये साधन भजन में लगेगा, अपना कर्म बिचारा भोगते 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 अब यह अयोध्या में मृग बन कर गया। उनको भगवान मारते थे कि क्यों बिचारे को अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़े, उनको मारते थे भगवान। और उसके अलावा भगवान का कहीं धनुष बाण का प्रयोग हुआ ही नहीं। अब धनुष बाण का प्रयोग तो यही होगा, चित्रकूट तक तो प्रेम लीला थी भगवान की, वहां जो है कोई मारना काटना नहीं था। भगवान कृष्ण तो 5 ही दिन हुए थे, 5 दिन पूतना को मारा, उनकी वो प्रेम लीला थी। यहाँ की यहाँ हमारे भगवान राम बड़ी मर्यादा में, कोई उनको धनुष बाण लेकर के मारने का नहीं, अब इनको मारना है। तो बाण शरासनम कटिल सत तूणी रभारम्बरम, वे कमल नेत्र भगवान जटाजूट से सुशोभित सीता लक्ष्मण के साथ में वन वन में जा रहे हैं, उन राम को मैं प्रणाम करता हूँ। पहले शंकर जी को प्रणाम किया और अब जो है राम जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी से पूछे कि महाराज आपने शंकर जी को पहले क्यों रखा और राम जी को बाद में क्यों रखा? कि भगवान शंकर ने यही रूप देखने के लिए प्रार्थना की थी कि मैं वनवासी राम के दर्शन करना चाहता हूँ। उस समय में राम के और लक्ष्मण के दर्शन किए थे और जय सच्चिदानंद पावन कहा था, तो उसी रूप को देखा था ना शंकर भगवान ने, तो वो शंकर भगवान ने ध्यान किया। तो तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि भगवान के हृदय में भगवान का भक्त का स्थान ऊंचा होता है, अतः भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए पहले शंकर जी के वंदना की, अब राम जी की वंदना कर रहे थे। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावै मोह विमूढ़ जे हरि विमुखन धर्म रती। भगवान का चरित्र बड़ा रहस्यमय होता है। एक महापुरुष का भी बर्ताव बड़ा रहस्यपूर्ण होता है, फिर भगवान का तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान के गूढ़ चरित्र से बड़े बड़े पंडित और ऋषि मुनि वैराग्य को प्राप्त होते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं, महामूर्ख जो मोह में पड़े हुए रहते हैं, जो भगवान से विमुख रहने वाले होते हैं, जिनकी धर्म में रति नहीं है, वे और ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान सर्वसमर्थ थे, भगवान सर्वज्ञ थे, तो फिर हनुमान जी को खोजने के लिए क्यों भेजा? उनको पहले ही कह देना चाहिए कि रावण सीता को ले गया, वो जंगल में रोते फिरे, पूछते फिरे, ये कहे कि भगवान है तुम्हारे, वो जानते नहीं। भगवान आनंदमय है तो रोते क्यों है? भगवान को पता था कि ऐसे ऐसे हमारी राजगद्दी होने वाली नहीं है, तो उनको पहले ही कह देना चाहिए कि हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्यों बिचारी केकई को और वरदान के लिए प्रतीक्षा करवाई, उसको कलंकित किया? भगवान तो सब जानते ही थे ना कि भाई हम राजगद्दी नहीं लेंगे, अभी हम घूम के आएंगे, जंगलों में जाके आएंगे, रावण को मार के आएंगे। ये क्या बात है? मूर्खों की बातें होती है। ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं कि जो भगवान को एक सामान्य आदमी की तरह समझ करके प्रश्न करते हैं, वे भगवान के लीला के गूढ़ रहस्य को नहीं जानते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले मैंने भरत का प्रेम आप लोगों के सामने रखा, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसा मैंने भरत का प्रेम रखा। अब आप भगवान का चरित्र सुनिए। देखो चरित्र तो पहले भी कहा है भगवान का, लेकिन वो सारा भगवान का चरित्र था ना, वो भरत चरित्र में डूब गया। भरत जी जब चित्रकूट में आए तो भगवान की पिछली सब लीलाएं महत्वहीन हो गई। भरत जी का त्याग था, वो भगवान के मन में बैठ गया, सब लोगों के मन में बैठ गया, तो वो भरत चरित्र ही है सब कुछ। प्रभु चरित्र तो अब चालू होता है, चाहे भगवान का जन्म हुआ हो, चाहे भगवान का विवाह हुआ हो, और चाहे भगवान का अयोध्या में निवास हुआ हो, चाहे चित्रकूट में हो, जितने भी हुआ है उसमें भरत चरित्र ने सबको ढक दिया। इसलिए कहते हैं कि अब प्रभु चरित्र सुनाऊ अति पावन। भरत जी के चरित्र के सुनाने के बाद अब मेरे मन में बड़ी निर्मलता आई, बड़ी पवित्रता आई, अब मैं राम जी के चरित्र को सुनाने लायक हुआ हूँ। ऐसे ऐसे उन्होंने चरित्र किए हैं तो देवताओं को भी अच्छे लगते हैं, ऋषि मुनियों को भी अच्छे लगते हैं। अब देखो सबसे पहले वो जयंत प्रसंग है, ये पहले ही पहले क्यों दिया यहाँ? ये जयंत प्रसंग है ना, ये बात है ना, ये वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में जाकर के हनुमान जी को सीता जी सुनाती है, लेकिन यहाँ ये पहले ही प्रसंग दे दिए गोस्वामी जी महाराज। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण के और गोस्वामी जी महाराज के समय में बड़ा अंतराल हो गया, लोगों के अंदर श्रद्धा का भाव का काल क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। एक बार वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था, परंपरा से सुना है कि किसी ने पूछा कि सेठ जी क्या बताएं, हम लोग आपस में सत्संग की चर्चा करते हैं, हमारे सबके मन में थोड़ी देर तो भगवान का ध्यान होता है, फिर आगे होता नहीं, बात क्या है? तो सेठ जी ने कहा कि देश काल का प्रभाव पड़ता है। उस समय में अंग्रेजों का जापान के साथ में युद्ध हो रहा था, युद्ध की बड़ी भारी उसमें चर्चा थी, तो उन्होंने कहा कि नापासर में आप जाकर के सेवाराम जी महाराज से पूछ लो कि वो एकांत में ध्यान करते हैं, उनके भी मन पर इस वातावरण का असर पड़ता है, सेवाराम जी महाराज से पूछ लो। बहुत अच्छा, बहुत आदर करते थे सेठ जी सेवाराम जी महाराज का भी, अस्तु तो उनका असर पड़ा करता है। तो जो है हमारे भगवान अभी चित्रकूट में ही बैठे हैं, चित्रकूट में ही, कहीं नहीं गए भगवान। तो एक बार की बात है, भगवान अपने हाथ से यूं फूल चुन चुन करके लाए थे, और फूल ला करके भगवान ने फूलों की एक बहुत अच्छी माला बनाई और फूल के कई आभूषण बनाए, हाथ में पहनने के लिए, सीता जी के हाथ में पहनने के लिए, सीता जी के चोटी में पहनने के लिए, सीता जी के गले में पहनने के लिए, निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथ से राम जी ने गूंथ गूंथ करके। क्यों बनाए भाई? इसलिए बनाया कि चित्रकूट है, ये प्रेम स्थल है, यहाँ भगवान का और भक्त का प्रेम दिखता है। तो भगवान का जैसे भरत में और भरत का भगवान में, ऐसे ही सीता जी का राम जी में और राम जी का सीता जी में प्रेम। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता जी को बड़े प्रेम से भगवान ने पहनाया और एक बड़ी सुंदर स्फटिक शिला थी उसके ऊपर बैठ गए भगवान। अब वहां क्या हुआ कि देवताओं का राजा इंद्र, उसका बेटा जयंत था, वो धरी वायस वैसा कौवा बन करके आया और वो आज भगवान का बल देखना चाहता था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान की परीक्षा करते हो तुम, तुमको भगवान का बल देखना है तो भगवान के पास सीधे सीधे क्यों नहीं आते? लेकिन कौवा बन करके आना और फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए कि देखे कितना बल है, गोस्वामी जी महाराज को बहुत बुरा लगा। गोस्वामी जी कहने लगे कि जैसे पिपीली का माने चींटी है वो सागर को पार करना चाहेगी, देखे सागर को पार करे, ऐसे वो राम जी का बल देखना चाहता था। उसने क्या किया कि वहां पर सीता जी विराजमान थी, सीता जी के चरणों में चौंस मारा और वो सीता जी के शरीर का जो खून था वो खून राम जी तक पहुंचा। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है उसमें हम लोगों के समान खून नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मलमूत्र नहीं होता, स्वेद नहीं होता, इसीलिए हम लोगों के जैसे बाल आते हैं ऐसे भगवान के यहाँ बाल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका शरीर चिन्मय होता है। तो यहाँ सीता जी के शरीर का खून निकलना कैसे बताया गया? तो ये सब बातें आती हैं। इसका समाधान ये है कि जैसे भगवान अजन्मा होकर जन्म की लीला करते हैं, ऐसे ही भगवान रक्त की लीला करते हैं। रक्त बताइए, रक्त हम लोगों के समान भगवान भी हड्डी रक्त आदि दिखाते हैं, वास्तव में नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग भगवान की लीला के अंदर देखते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये सब क्या है? ये तो वपुधारी है, शरीरधारी है, ये विष्णु तो शरीरधारी है, इसलिए निर्गुण निराकार तत्व से तो बहुत नीचा है, हम तो बहुत ऊंचे चले आए, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। सब गलत बात है। भगवान का शरीर हम लोगों के समान नहीं होता। जिस ग्रंथ में वो ये मानते हैं कि राम जी का शरीर मनुष्य शरीर जैसा है, वो दशरथ जी का बेटा है, वो क्या भगवान हो सकता है? लेकिन आपको क्या पता कि दशरथ जी का बेटा है? कि रामायण में लिखा है ना, रामायण में लिखा है दशरथ जी का बेटा है वो। तो हमारी रामायण में ये भी तो लिखा है कि अज अविनाशी परब्रह्म परमात्म तत्व ही यहाँ दशरथ जी का बेटा बना है लीला से, ये भी तो लिखा है। ये हम नहीं मानते, तो आधी बात नहीं मानेंगे। जिस बात से हमारी बुद्धि से हम लोग जो है भगवान में दोष देख सकें, उस बात को मानेंगे। इसलिए उन लोगों का ये कहना है कि बस हम बताएं निर्गुण निराकार वही सबसे बड़ा है और जो है ये राम कृष्ण और कुछ नहीं है। एक जगह हमने सुना किसी से, परंपरा से, हनुमान जी गए, हनुमान जी तो बांध रहे, बांध रहे, हनुमान जी की फोटो मत रखो, शिव जी की फोटो मत रखो, राम जी की फोटो मत रखो, ऐसी ऐसी बातें आती हैं। तो ये क्या है वास्तव में, ये सब मंदमती की बातें हैं। तो सीता जी का जो खून निकलना यहां बता दें, लीला है, लीला। तो वो खून बहता बहता गया, राम जी के शरीर में गरम गरम खून लगा। अरे ये क्या हुआ? तो अरे ये कौवा। तो उन्होंने तिनका लिया, तिनका लेकर के उसमें ब्रह्मास्त्र की भावना करके राम जी ने छोड़ दिया। सिंह का धनुष सायक संधाना। अब कोई कहे कि राम जी के पास तो बाण था, वो बाण क्यों नहीं लिया? उस बाण को यदि भगवान छोड़ देना तो ये जयंत था वो मर जाता है। क्योंकि जितने बाण यहां भगवान ने रखे थे ये अपने जगत के शत्रुओं को मारने के लिए रखे थे भगवान ने। वो जगत के शत्रु तो जगत का शत्रु था नहीं, उसने तो केवल सीता जी का अपराध किया। तो एक तरह से वो भगवान के ही अंग का शत्रु था। इसलिए भगवान ने एक तिनका लेकर उस पर धनुष की बाण की कल्पना करके उसको धनुष रख के ब्रह्म सर लगाया, ब्रह्म बाण। तब वो कौवा वहां से उड़ गया और अपने असली रूप में पिताजी के पास गया, इंद्र के पास। इंद्र ने कहा क्या बात है, मुंह उतरा हुआ है, वह वो ब्रह्म बाण आ रहा है, मेरे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, किसने छोड़ा? राम जी ने, निकल जाओ यहां से, भगवान के साथ द्रोह करके मेरे यहां आश्रय चाहते हैं, चले जाओ यहां से। तब उसने देखा कि जब इंद्र नहीं मुझे नहीं, अब मैं कहां जाऊं? बड़ा उसको विचार हुआ, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया। उन्होंने कहा कि देखो इंद्रपुत्र, तुम्हारे जैसों को यदि हम शरण दे देंगे तो इसका अर्थ दुनिया में बड़ा भारी पाप बढ़ेगा, कि जो भगवान से विमुख होता है उसको कहीं न कहीं शरण तो मिल ही जाती है। भगवान का अपराध करो, भगवान से विमुख हो जाओ और हमारे यहां आश्रय ले, ऐसा कैसे होगा, चले जाओ यहां से। काहू बैठन कहन हो ही, किसी ने भी नहीं कहा। भाई जो आदमी राम जी से विमुख हो जाता है उसके लिए तो मातु मृत्यु, माता होती है वो मृत्यु के समान हो जाती है, पिता है वो यमराज जी के समान हो जाता है, अमृत है वो जहर के समान हो जाता है, और मित्र कराई सत रिपु के करणी, और मित्र होता है वो 100 शत्रुओं के समान बैरी हो जाता है, और ताके विबुद नदी बैतरणी, और वो कहे गंगा जी में जाकर स्नान कर लूं, राम जी से विमुख है वो तो है तेरे लिए बैतरणी नदी है वो, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। इधर नारद जी ने देखा कि इसको बिचारे को कोई नहीं पूछ रहा है, तो नारद जी मिल गए। अरे जयंत क्या हो, तुम्हारे क्या हो गया? महाराज बस ऐसी दशा होगी, मैंने उड़ता तीर गले में ले लिया, भगवान की मैंने परीक्षा ली, कोई बात नहीं, एक काम करो भगवान की शरण में हो जाओ। उन्होंने तो बाण भेजा, बस बड़े दयालु हैं भगवान, जिनका अपराध करते हो उन्हीं वही अपराध को क्षमा करेंगे, जाओ तो सही। देखो जयंत, संसार के अंदर लोग तुमसे बहुत बात सीखेंगे। ये क्या सीखेंगे कि भाई अब गलती तो हो गई, भगवान से जाकर क्षमा याचना करो। नारद जी महाराज ने भेज दिया और वो आर्त होकर के सच्चे मन से गया और कहने लगा कि त्राही माम बचाओ महाराज, बचाओ मुझे, बचाओ, आप तो अतुलित बल वाले हो। अरे तो बल की तो परीक्षा ही करने आया है, अब पता चला कि भाई अतुलित बल वाले हो, अतुलित बल अतुलित प्रभुता है, और मैं मतिमंद जान नहीं पाई, गलती हो गई महाराज, मूर्ख मैं कहां कैसे मानता, मैं बहुत दुख पाया हूं महाराज। अब देखो बात, प्रश्न ये होते हैं, प्रश्न ये उठता है कि कौवे के शरीर से भगवान ने बाण लगाया था, अब वो वापिस जो भगवान की शरण में आया है ना, उस समय इंद्रपुत्र ही बनकर गया, जयंत के रूप में आया है। अब यहां पर वो कौवे के रूप में नहीं आया। अब महाराज आपके अलावा मुझे कहीं शरण नहीं दिखती है। अब जैसा भी हूं आपकी शरण में हूं, मारो तारो कुछ भी करो। भगवान ने कहा कोई बात। वो खूब रोने लगा ना तो भगवान के भी आंखों में आंसू आ गए। सुनी कृपालु अति आरत बानी, कृपालु कृपा होने हुए, कृपालु भगवान ने कृपा की, उसके एक आंख उसकी जो है नष्ट कर दी, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ये कथा क्यों सुनाए हैं? ये कथा इसलिए सुनाए हैं कि रावण जैसा जो है दुष्ट व्यक्ति, वो भी यदि भगवान की शरण में जयंत की तरह आ जाता तो भगवान उसको भी क्षमा करते। दूसरी ये कथा इसलिए कही जा रही है कि ये जो है रावण, अब वो दूसरा भाव आया था कि रावण जो है सीता जी का जब हरण हो गया तब रावण ने अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया, तो वहां सीता जी को इस प्रसंग की बार बार याद आती थी कि इंद्र के बेटे को भी भगवान ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा कहीं टिकने नहीं दिया, ये रावण इतना कैसे ऐश आराम कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। इंद्र के पुत्र को भगवान नहीं छोड़े और इसको क्यों क्षमा कर रहे हैं, रावण को क्यों क्षमा कर रहे हैं, ऐसा सीता जी के मन में बार बार विचार भी आ रहा था और एक मन में आश्वासन भी मिल रहा था कि भगवान जरूर रावण को दंड देंगे, क्योंकि जब इंद्र के पुत्र को नहीं छोड़ा तो रावण को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए ये प्रसंग पहले बताया कि नमोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, उसका तो वध ही कर देना चाहिए था, लेकिन भगवान देखे, भगवान ने देखा कि भाई ये काम तो दुनिया ही करती है, अनिष्ट करने वाले का अनिष्ट करो, ये दुनिया सब करती है, मेरी शरण में आ जाए और मैं उसको मेरे ही शस्त्र के द्वारा पीड़ित देख करके मैं ही नहीं छुड़ाऊं, फिर क्षमा करने का ये अवसर तो किसी को भी नहीं मिल सकेगा, क्षमा का पाठ कौन पढ़ेगा। तो प्रभु छाड़े वो करी छो को कृपाल रघुवीर सम, इसीलिए तो भगवान का स्तवन करना बताया गया है, भगवान की स्तुति करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाने से पाप दूर होते हैं। भगवान ने इस प्रकार से चित्रकूट में जो है रह करके अनेक प्रकार की लीला की। भगवान ने देखा कि भाई अब मेरा यहाँ पर लोगों से संपर्क बहुत हो गया, बहुत भीड़ बढ़ने लगी, कभी तो अयोध्या से आते हैं, मिथिला से आते हैं, फिर कभी और नगर से आते हैं, बहुत इधर उधर से लोग आते हैं, अब अपने यहां से विदा हो जाओ। तो विदा होते समय में अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर के अत्रि के आश्रम में गए, चित्रकूट में ही रहते थे अत्रि जी महाराज, जिन्होंने भरतकूप के लिए कहा, उन अत्रि के पास गए। अत्रि ने कहा अरे आज आप तीनों कैसे आए राव हमारे आश्रम में, बड़ा प्रेम से उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनको बैठाया और बैठा करके उनकी स्तुति गाई, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम, बड़ी स्तुति, बड़ी प्रेम से स्तुति गाई। उस स्तुति में निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सब बात आ गई और इन्होंने कहा कि आप जगत के गुरु हैं, सारे जगत के आप गुरु हैं, जगत गुरुं च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोग्य नाम सुदुर्लभम, और कह दिया कि इस स्तुति का जो पाठ करता है उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है। अनेक प्रकार से उन्होंने जो है भगवान की स्तुति गाई और इधर सीता जी है वो अनुसुया जी के पास गई, अत्रि जी की पत्नी थी अनुसुया जी। अनुसुया जी बहुत बूढ़ी थी, सीता जी को देखकर सीता जी के सिर पर हाथ फेरा, बहुत प्यार स्नेह किया। जैसे कोई दादी माँ होती है वो अपनी पौत्री की, अथवा कोई दादी सासू होती है तो वो अपने पौत्र वधु की जिस प्रकार से मंगल कामना करती है, स्नेह करती है, आशीर्वाद देती है, ऐसे आंखों में पानी लिए लिए अनुसुईया जी बड़े प्रेम से आशीर्वाद देती है और कहती है, देखो सीते, हमने कई दिनों से आभूषण और ये वस्त्र छिपा कर रखे थे अपने पास में कि तुम आओगे तो हम तुमको देंगे। ये बड़े दिव्य आभूषण है और ये दिव्य वस्त्र है, इन वस्त्रों को तुम पहनोगी तो इनको धोने की जरूरत नहीं है, और ये बड़े दिव्य ये आभूषण है, इनकी चमक कभी कम नहीं होगी, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती रहेगी। और उनको कुछ फल भी दिए कि ये फल तुम खा लो, तुमको आगे कभी भूख भी नहीं लगेगी। क्या पता भाई, जंगल में रहते हो, कभी ऐसा ही मौका आ जाए कि जहां तुमको खाना न पड़े वहां पर रहना पड़े, इसलिए ये तुम फल भी खा लो, ये वस्त्र भी पहन लो और ये आभूषण भी पहन लो। ऐसा सब कुछ देने के बाद कहा कि देखो, ये तो हमने दिया तुमको, अब हम तुम्हारे से कुछ चर्चा भी करना चाहते हैं। देखो बेटा, इस संसार में स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई नहीं होता है। माता है, पिता है, भाई है, ये एक थोड़ी देर का साथ निभाने वाले होते हैं, परंतु हे राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, जो स्त्री का पतिदेव होता है उसके समान उसके लिए कोई देने वाला नहीं, असली भरता तो वही होता है। परंतु मैं देखती हूँ कि संसार में बहुत सी अधम स्त्रियां होती हैं, वो पति को एक मनुष्य ही मान करके चलती है और सेवा में बाधा डालती है, सेवा करती नहीं है। स्त्री को ये विचार करना चाहिए कि मेरा कितना ऊंचा स्थान है। चार चीजें ऐसी होती हैं कि ये आपत्ति के अंदर ही परखी जाती है, एक तो धैर्य, एक धर्म, एक मित्र और एक स्त्री। इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय में होती है। पति पर आपत आ जाए तो उत्तम स्त्री होती है, वो जो है उसकी आफत को अपनी आफत मानती है। ऐसी ऐसी माताएं हुई है भाई कि पति को बहुत बड़ा घाटा लग गया तो अपना स्त्री धन था वो दे दिया। आप इतने चिंतित रहते हो, दुनिया भर का आप पर कर्जा हो गया, अब मेरा ये आभूषण क्या काम का, मेरे असली आभूषण तो आप हो, बेच दिया, कर्जा उतार दिया, फिर उसके पास खूब धन हो गया और फिर वापस स्त्री के गहने बना दिए, फिर वापस घाटा लग गया तो फिर वापस तीन बार उसने बेचा, तीन बार, फिर बहुत पैसा हो गया। तो उस स्त्री के त्याग के कारण से यूं जो है घर में वैभव हो गया। तो चार की परीक्षा तो भाई आपत्ति के समय में होती है। सीते, अपना पति यदि बूढ़ा भी हो, रोगी भी हो, मूर्ख भी हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और अति दीना, हर दृष्टि से वो बहुत ही गरीब हो, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं हो, ऐसा भी यदि पति होता है, उसका भी यदि कोई अपमान करती है स्त्री, तो वो यमराज जी के लोक में जाती है, उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए स्त्री का एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, एक ही नियम होता है कि शरीर से, मन से, वाणी से अपने पतिदेव की पूजा करो, अर्थात पति के साथ निश्चल प्रेम रखो। चार प्रकार की पतिव्रता होती है, संतों ने शास्त्रों में पुराणों में बात कही है। सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री तो वो होती है कि जिसको अपने पुरुष के अलावा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, कोई पुरुष है ही नहीं। वृंदावन में मीराबाई गई थी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, तो बिहारी जी का दर्शन करने के बाद मीराबाई ने वहां पूछा कि भाई यहाँ कोई अच्छे संत हैं क्या, संतों के भी दर्शन करें। भगवान के दर्शन संत दर्शन के बिना पुराने जमाने में अधूरे मानते थे, कि वो संत भी तो हर गांव में हर जगह होते ही थे, तो भगवान के दर्शन संत दर्शन के बिना अधूरे। तो कहा कि अब भगवान का श्री विग्रह का दर्शन हो गया, अब संतों का दर्शन, कोई अच्छे संत हो तो बताओ, हम तो जानते नहीं। तो लोगों का यहाँ एक बहुत अच्छे संत रहते हैं, एकांत रहते हैं। तो मीरा भाई गई वहां साथ में, राजरानी थी, सब लवाजमा उनके साथ। वहां पर जाकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, तो वहां पूछा, सेवकों ने पूछा कि आप, लोगों ने कहा कि मीराबाई जी हैं और संतों का दर्शन करने आए, कि मैं जाके पूछता हूँ। उन्होंने जाके कहा, महाराज चित्तौड़ से मीराबाई आई है, आपका दर्शन करना चाहती है। तो भाई देखो, हम स्त्रियों से मिलते नहीं हैं, पुरुष होते तो हम मिल लेते, स्त्रियों से हम नहीं मिलते हैं। तब वो मीराबाई के पास आकर कहने लगे, महाराज मीराबाई जी क्षमा करना, हमारे महाराज ने कहा है कि हम स्त्रियों से मिलते नहीं हैं। तो मेरा भाई, कोई बात नहीं, जमीन पर माथा टेका कि संत रहते हैं, मैं इनको यहीं से ही प्रणाम कर लेती हूं। मैंने तो ये सोचा था कि वृंदावन में केवल एक कृष्ण ही पुरुष रहता है, बाकी कोई स्त्री है ही नहीं, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं। मैंने तो संसार भर में एक ही को पुरुष माना है, कृष्ण को पुरुष माना है, बाकी किसी को मैंने पुरुष दृष्टि से देखा ही नहीं है। फिर भी यदि महाराज ऐसा मानते हैं तो मैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम करके रवाना हो गई। ऐसी विचित्र बात सुनकर के वो वापस गए संत के पास। संत के पास जाकर कहने लगे, महाराज कि क्या बात हुई? मीराबाई ने एक बहुत विचित्र बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तो इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में एक ही को पुरुष मानती हूं, और किसी को पुरुष मानती नहीं हूं, केवल कृष्ण ही पुरुष है और कोई पुरुष है ही नहीं। अरे इतना ऊंचा भाव है उसका, बुलाओ बुलाओ भाई। वो संत आए, मीराबाई के चरणों में गिर गए कि माताजी क्षमा करना, हम तो जो है इस बात को समझ नहीं सके थे। तो अत्रि ऋषि बोलते हैं, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया जी बोलती है कि उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम स्त्री पतिव्रता वो होती है कि जिसके लिए सपने वान पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी कोई दूसरा पुरुष है ऐसे उसके मन में जसता ही नहीं है ही नहीं। एक नंबर की पतिव्रता, किसी को पुरुष दृष्टि से देखती नहीं है। और दूसरी नंबर की पतिव्रता वो है कि जो भाई को भाई मानती, पुरुषों में भाई, सब जितने पुरुष हैं उन पुरुषों को या तो पिता मानेगी या भाई मानेगी, या अपने से छोटे तो उनको बेटा मानेगी। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, निज भ्राता निज पिता और निज पुत्र उसके समान देखते हैं। ये दो नंबर की पतिव्रता है। तीसरे नंबर की पतिव्रता वो होती है जो अपने धर्म पर ध्यान रखती है, जो ये विचार करती है कि मेरे धर्म में ही मुझे रहना चाहिए, वो तीसरे नंबर की पतिव्रता होती है। और जो भय के कारण से अपना पातिव्रत्य सुरक्षित रखती है, या मौका नहीं मिला इस कारण से वो अपने आप को सुरक्षित रख पाती है, तो वो चार नंबर की पतिव्रता होती है। हमको बड़ा दुख होता है कि पति बंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। अपने पति को धोखा देकर के जो अपना शील धर्म बिगाड़ दिया करती है, वे रौरव नरक में जाकर पड़ती है और सैकड़ों कल्पों तक पड़ी रहती है। क्योंकि धर्म की धुरीन होती है, धुरीन माने धारण करने वालों में श्रेष्ठ। थोड़े से एक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों का इस प्रकार से दुख पाना कहां तक बुद्धिमानी है। हम तो ये कहती है बेटा सीते कि स्त्री को तो बिना किसी परिश्रम के परम गति मिल सकती है, केवल पातिव्रत्य धर्म में रहे बस। बिनु श्रम नारी परम गति लहि पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहि। सब छलों को दूर करके और केवल पतिव्रत धर्म में ही रहे तो वो बिना परिश्रम के कल्याण को प्राप्त कर सकती, कल्याण को नहीं परम गति है, वैकुंठ जा सकती है। और जो पति को थोड़ी थोड़ी बातों में डांटती रहती है, लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, उसके मन के प्रतिकूल चलती है, तो भाई वो अगले जन्म में जवानी में ही विधवा हो जाया करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा हो पाई तरुणाई। देखो सीता स्त्री होती है वो स्वाभाविक ही अपवित्र होती है, उसके शरीर में पवित्रता नहीं रहती है, क्योंकि मासिक धर्म की जो अपवित्रता है वो तो प्राय रहती ही है ना, तो ये अपवित्रता स्त्री में जन्मजात ही रहती है, अपवित्रता रहेगी। परंतु ऐसी स्त्री बहुत जल्दी उत्तम गति को इसलिए प्राप्त करती है कि पति सेवत, पति की सेवा कर ली, इसलिए सहज अपावनि नारी पति सेवत शुभ गति लहि जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। इसलिए चारों ही वेदों में पतिव्रताओं की बड़ी महिमा गाई है। देखो सीता जी, मैंने जितनी बातें कही है ना, ये आपको शिक्षा के लिए नहीं कही है, ये आप तो सब पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, आप तो मेरे राम जी के प्राण प्रिया हैं, आपके हृदय में राम जी प्राण से ज्यादा प्रिय होकर के विराजमान है, ये मैंने आपके लिए नहीं कहा है, ये मैंने कहू कथा संसार हित, ये मैंने संसार के हित के लिए कही है। आपको क्या उपदेश दे महाराज, आपको उपदेश नहीं दिया है। सीता जी सब उपदेश को सुनकर के बड़ी आनंद का अनुभव करने लगी और उनके चरणों में अपना सिर नवाया और उसके बाद अत्रि और अनुसुईया को प्रणाम करके राम जी महाराज जाने लगे। तो उन्होंने जाते जाते पूछा, हे ऋषिवर मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे कौन से वन में जाना चाहिए, और हे मुनिश्रेष्ठ आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करना, चाहे दर्शन हो चाहे न हो, अव्यक्त रूप से आपकी कृपा हमारे पर रहनी चाहिए, मैं आपका सेवक हूं, मेरा कभी आप त्याग मत करना। भगवान की ऐसी वाणी बोल सुनकर के अत्रि ऋषि बड़े गदगद हो गए और कहने लगे कि महाराज आपकी कृपा को प्राप्त करके ब्रह्मा है, शिव है, सनकादि ऋषि है, ये सब बड़े बड़े परमार्थ को बताने वाले हैं, वे निष्काम होकर के आपके प्यारे हो गए, और आप कैसे दीन बंधु हैं, कैसे कोमल वचन आप बोलते हैं, वाह महाराज अब जानी मैं श्री चतुराई भजी तुम्हें सब देव बिहाई, अब मैं जान गया हूँ कि आपकी चतुराई क्या है, और ये लक्ष्मी की भी चतुराई समझ गया हूँ कि सब देवताओं को छोड़ करके आपके पास क्यों रहती है, कि आप बड़े बड़े मधुर स्वभाव के, बड़े कोमल स्वभाव के हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता है, कैसा आपका शील है, मैं आपको कैसे कहूँ कि आप चले जाओ, कहीं भी दिखाओ जाओ तुम स्वामी चित्रकूट से तुम चले जाओ, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि जाना तो आपको है, लीला तो आपको करनी है, और आप अंतर्यामी हो, सब बात जानते हो, अब मैं कैसे कहूँ कि आप यहाँ से इधर जाओ कि उधर जाओ, महाराज मैं तो आपके सामने कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतना कहते कहते हमारे अत्रि ऋषि है वो दब दब हो गए, आंखों से उनके जल बरसने लगा, तन पुलकित हो गया, मन प्रेम से परिपूर्ण हो गया, भगवान का मुख कमल देख करके वे इस विचार में डूब गए कि अरे मैंने कौन से जन्म में कौन सा तप किया होगा जो मन से, ज्ञान से, गुणों से, इंद्रियों से अतीत है, ऐसे प्रभु को मैंने आज दर्शन के आज इस रूप में देखा, मैंने दर्शन किया इनका। ओहो, ऐसा लगता है कि जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावही, जिसके जन्म जन्मांतर के कितने जप योग धर्म समूह एक साथ इकट्ठे होते हैं उसकी भगवान में अनुपम भक्ति होती है। मेरे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसे उनके मन में भगवान के दर्शनों की बड़े आनंद की धारा सी बहने लगी। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, राम जी का जो सुयश होता है वो कलियुग के सारे मैल को दूर करने वाला होता है। इसलिए मनुष्य को भगवान का चरित्र सुनना चाहिए, और चतुर व्यक्ति वही है कि जो भगवान के भजन में लग जाता है, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करके जो है भगवान आगे रवाना हुए। अब आगे तो राम है और पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं और बीच में सीता जी हैं। मुनियों का वेश बनाए हुए हैं, बड़ी अच्छी राम जी की शोभा हो रही है। मुनिवर वेश बने अति काछे, काछे माने शोभायमान। अब बीच में सीता जी हैं, ये सीता जी बीच में है तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती हो, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। देखो सगुण साकार में हमारे तुलसीदास जी महाराज निर्गुण निराकार की उपमा दी, निर्गुण निराकार की उपमा थोड़ी ही होती है, तुलसीदास जी की कला है ये। ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अब जहां जहां भगवान नदियों में, नदियों के किनारे, वन में, पर्वत में और ऊंचे नीचे मार्ग में जाते हैं, वो सब मार्ग, सब ये पृथ्वी है ये देखती है कि तो हमारे पति है, भगवान से ही तो पैदा हुए, सबके स्वामी भगवान है। तो भगवान को देख करके बड़ा सुंदर मार्ग देते हैं, देह बर बाटा, बर माने श्रेष्ठ, बाटा माने मार्ग देते हैं सब, ये बढ़िया बढ़िया मार्ग। जहां जहां भगवान जाते हैं बदल वहां वहां देवताओं के द्वारा आच्छादित कर दिए जाते हैं। ऐसे चलते 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 एक बड़ा भारी विराट नाम का असुर मिला, बड़ा गर्जना करके भगवान की तरफ आया। देखो वाल्मीकि रामायण में आपने सुना होगा ना कि ऐसे चले जा रहे थे तो राम जी के यहाँ धनुष बाण थे ना, तो सीता जी वहां बात करने की, हे प्राणनाथ जब आपने ऋषि मुनियों का वेश बनाया है तो इतने इतने ऋषि मुनियों के हमने दर्शन किए, किसी के पास धनुष बाण तो है ही नहीं, आप ये धनुष बाण क्यों रखते हो? आपके पास तलवार कटार भी है, लक्ष्मण जी की पिटारी में और भी शस्त्र है, अपन शस्त्र लेकर के क्यों जा रहे हैं? जब ऋषि मुनियों का ही वेश बनाया है, ऋषि मुनि तो कोई शस्त्र नहीं रखते, ऋषि मुनि सबको अभय रखते हैं, अभय करते हैं, तो आप ये शस्त्र रख करके डराते क्यों हैं? भगवान ने कहा देखो हम तो तापस वेश, हम तो वेश मात्र तपस्वियों का है, हम तपस्वी थोड़ा ही है तो हम क्षत्रिय ना, तो क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में तो हमारा जन्म हुआ और वेश हमारा तपस्वियों का है, और फिर जंगल में जा रहे हैं सीता जी और फिर आप सब साथ में हो, शस्त्र तो चाहिए ना, बिना शस्त्र के तो ठीक नहीं रहता। कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई, ये शस्त्र क्यों रखते हैं? शस्त्र को आप यहीं कहीं टांग दीजिए। इतने में विराद आ गया और विराद आया और उसने आकर कह रही हूँ सीता जी को ही उठाया। तब सीता जी चिल्लाई दो, हे राम जी मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, इसको अपने शस्त्रों से मारो। तब भगवान ने शस्त्र चलाए और मारा गया, तो मरते मरते वो अपने असली रूप में आ गया। तब भगवान से उसने कहा कि महाराज आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, हम आपको क्या बता सकते हैं? तो ये विराट के समय में सीता जी ने कहा था कि अच्छा किया आप शस्त्र, ये शस्त्र नहीं रखते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, दुखी देख निज धाम पठावा। फिर जो है भगवान ने उसको अपने धाम में भेज दिया। आगे चलते चलते अब सर्वंग ऋषि का आश्रम आता है। बड़ा अच्छा भक्ति का प्रसंग है। भगवान सर्वभंग ऋषि के आश्रम के निकट तक पहुंच गए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी वाले की
जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय
आनंद कंद भगवान की
जय
भक्तवत्सल भगवान की
जय जय